नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, 6 मई से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता ले सकती हैं। समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं।
सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है। साथ ही सत्र की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने बताया कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। विद्यार्थियों को अपने आधार नंबर का उपयोग करके सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुल्क भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन का शुल्क प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए है, जबकि उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का शुल्क प्रति प्रश्न 25 रुपए होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। कल भौतिकी व्याख्याता मनीषा संजय हवलदार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे और भौतिकी के शिक्षक तेजस हर्षद कुमार शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का व्यापक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सेवा गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन, जिला परिवहन कार्यालय, वाहन निरीक्षण इकाई और वाहन प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के डिजाइन, क्षमता, जल निकासी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। वहीं डीटीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से भवन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त क्षमता वाला आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित किया जाए जहां समुचित सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि पिछले महीने की 6 तारीख से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1 लाख से अधिक लीटर पेयजल वितरित किया गया, साथ ही 2 लाख से अधिक ORS पैकेट, 67 से अधिक गमछे और 49 से अधिक कैप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य जिले में इन शेड के माध्यम से अब तक 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। पश्चिम जिले में 920 लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें। दिल्ली नगर निगम ने आज ड्रोन आधारित भूस्थानिक सर्वेक्षण और डिजिटल ट्विन पहल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने बताया कि इन पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण, लिडार मैपिंग, 3D सिटी मॉडलिंग और आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल से निगम को संपत्ति कर प्रशासन को मजबूत करने, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और निगम प्रशासन के लिए एक मजबूत भूस्थानिक डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिटी SP जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल भराव की रोकथाम और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री खिरवार ने किशनगंज स्थित रेलवे अंडरब्रिज का दौरा कर जल भराव की संभावित समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एहतियातन पंपों की पर्याप्त व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए और मॉनसून प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। इससे वर्षा के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, जल हानि में कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन को बदलने और पूरे वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
ये जो पुरानी लाइनें होती हैं, इनमें लीकेज बहुत होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए, वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है, बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं।
श्री सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली सब ब्रांच नहर को खुली नहर प्रणाली से बंद पाइपलाइन आधारित प्रणाली में बदलने की संभावना पर भी काम कर रही है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ ईंधन बचाओ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण डीटीसी की देवी इलेक्ट्रिक बस से किया। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं और सुझाव रखे। श्री सिंह ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
सारे अधिकारी हमारे साथ में हैं, सारे कार्यों को नोट कर रहे हैं और कोई भी पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खूब हमको पैसा मिल रहा है। हमारे अधिकारी एस्टीमेट बना रहे हैं, कामों को जितना जल्दी हो सके तेजी से करने की कोशिश।
दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंदराज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में सड़क, स्वच्छता, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र स्थित प्रिंटर अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। श्री वाही ने बताया कि एरोबिन की सहायता से एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने हाउसिंग सोसाइटी से अपने प्रांगण में एरोबिन स्थापित करने की मुहिम से जुड़ने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि नामांकन केवल awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्व मौसम संगठन ने अल नीनो के बनने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून और अगस्त के बीच अल नीनो के प्रभाव की 80% संभावना है और ये नवंबर तक जारी रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्रभाव और भी गंभीर होगा। दिल्ली में आज के सुबह के समय हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्त सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।